हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर्यांश के दादाजी की बर्थडे पार्टी के अब ज्यादा दिन नहीं रहे थे और ये पार्टी आर्यांश और कियाना दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी। जहाँ आर्यांश ने इस पार्टी में कियाना से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का प्लान बना लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंक और सौरभ बजाज भी काफी कुछ प्लान कर रहे थे। प्रियंक दोपहर के वक्त दीवा से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया था। उन दोनों की ये मीटिंग पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल थी और इस बारे में आर्यांश कुछ नहीं जानता था। रेस्टोरेंट के अंदर आने से पहले दीवा ने इधर उधर देखा। उसे थोड़ा आगे जाने पर कोने की एक टेबल पर प्रियंक दिख गया था। दीवा ने अपने कदम सीधे उसी तरफ बढ़ा दिए। दीवा प्रियंक के सामने आकर बैठी। कुछ पल रुककर उसने परेशान लहजे में कहा, अगर तुम मुझे आर्यांश के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हो तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ ही यूज करूंगा? मैं तो तुम्हारा फायदा सोच रहा हूँ, तो आखिर तुमने हाँ कह ही दी, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? प्रियंक ने थोड़े हैरत भरे लहजे में पूछा। उसे लगा था कि दीवा को मनाना मुश्किल होगा, पर एक ही मुलाकात के बाद उसने हाँ कह दी थी। तुम बस अपने काम से मतलब रखो, दीवा ने उसे टालते हुए कहा। वो अपने और आर्यांश के रिश्ते के बीच की दूरी का फायदा प्रियंक को नहीं उठाने देना चाहती थी। दीवा ने फिलहाल सब कुछ छुपाना ही सही समझा। वहीं उसका जवाब सुनकर प्रियंक ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। वो बोला, सही कहा, रीजन चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हें साथ ले जाने से मतलब था और वो पूरा हो रहा है। तो हम कब जा रहे हैं? दीवा ने सीधा सीधा पूछा। 5 दिन बाद उनका बर्थडे है और हम 1 दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे, प्रियंक ने बताया। दीवा ने उसकी बात पर हामी भरी। उतने में वेटर उनकी टेबल तक आ गया था और दीवा ऑर्डर देने में बिजी हो गई। प्रियंक खोई हुई नगाहों से दीवा की तरफ देख रहा था। प्रियंक पहले मुलाकात में ही समझ गया था कि वो काफी मासूम है और ज्यादा दावपेच नहीं जानती। तभी आर्यांश जैसे इंसान ने उसे आसानी से मैनिपुलेट कर लिया था। प्रियंक मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद तुम टूट जाओगी दीवा गोयनका, लेकिन कम से कम तुम्हारे सामने आर्यांश की असली सच्चाई तो आएगी। उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया था, ना ही उससे। तुम अपनी लाइफ में अच्छा डिजर्व करती हो। इन सब के बाद एक बार तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल होगा, पर मैं जानता हूँ कि तुम खुद को संभाल लोगी। तुम्हें कुछ चाहिए? दीवा ने प्रियंक की तरफ देखते हुए पूछा। प्रियंक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। जिस तरह से प्रियंक उसे देख रहा था, दीवा को काफी अजीब महसूस हुआ। उसने इशारे से वेटर को जाने को कहा। वेटर के जाते ही दीवा ने प्रियंक के हाथ पर हल्का सा मारा और उसे घूरते हुए बोली, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरा इस्तेमाल करके आर्यांश के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं करोगे और तुम अभी से शुरू हो गए। मैं प्लानिंग नहीं कर रहा, बस देख रहा हूँ कि आर्यांश की किस्मत काफी अच्छी है। पहले वो जिस लड़की से प्यार करता था वो भी काफी खूबसूरत थी और तुम भी। सच कहूँ तो तुम दोनों में काफी चीजें एक जैसी है। अगर तुम दोनों को कोई साथ देखेगा तो यही कहेगा कि तुम दोनों बहने हो। रहने का तरीका और कुछ फेशियल फीचर्स भी मिलते हैं। प्रियंक ने काफी चालाकी से बातचीत का रुख बदल दिया था। दीवा को ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था कि आर्यांश इस वजह से उसके साथ है क्योंकि वो उसके पहले प्यार की तरह लगती है। लेकिन आज प्रियंक की बातें उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त की याद दिला रही थी, जो उसकी म्यूजिक कंपेनियन भी थी। जब भी वे दोनों साथ में बजाती या कहीं भी जाती तो लोग उन्हें बहने समझते थे। उसकी याद आते ही दीवा की आंखें हल्की नम होने लगी। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाने लगी। प्रियंक ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, लगता है मेरी बातों ने तुम्हें किसी की याद दिला दी, या फिर इस वजह से इमोशनल हो रही हो कि मैंने आर्यांश के पहले प्यार का जिक्र किया है। तुम्हें उससे जलन हो रही होगी ना? दीवा ने सख्त निगाहों से प्रियंक की तरफ देखा। बस इसी वजह से उसे प्रियंक पसंद नहीं था। वो बातों ही बातों में सामने वाले के दिमाग के साथ खेलने लगता था। दीवा को उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मिस्टर बजाज, आई थिंक हमें जितनी बातें करनी थी वो हो चुकी हैं। जब हमें न्यूयॉर्क के लिए निकलना होगा तभी कॉन्टैक्ट करेंगे। दीवा ने अपना बैग खोला और जो भी ऑर्डर किया था उसके हिसाब से पैसे मेन्यू बुक में रख दिए। बोर्ड कर जाने को हुई तभी प्रियंक जल्दी से खड़ा हुआ और उसके सामने आ गया। वो बोला, ओके, आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, उतनी ही बात करेंगे जितना तुम चाहोगे। साथ में लंच करते हैं और फिर शॉपिंग करने चलेंगे। हम दोनों साथ जा रहे हैं तो हमारे कपड़े भी एक दूसरे से मैच करने चाहिए ना? नो थैंक्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि साथ जाने वाले लोग एक जैसे कपड़े पहने, दीवा ने बेरुखी से जवाब दिया और आगे प्रियंक की बात सुने बिना ही वहां से चली गई। प्रियंक ने भी उसे इस बार रोका नहीं। उसने अपना मोबाइल निकाला और सीधा सौरभ को कॉल किया। डैड, दीवा मान गई है। बुआ को कॉल करके एक फैमिली डिनर अरेंज कीजिए जिसमें आर्यांश होना चाहिए। मुझे जानना है कि आखिर उसके दिमाग में दीवा को लेकर क्या प्लानिंग है। ठीक है, फिर आज रात ही मिलते हैं, सौरभ ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके सामने एक वीडियो चल रहा था। उसके पास सार्थक भी खड़ा था। वो वीडियो से शार्पशूटर रॉबिन ने भेजा था जिसे कियाना ने हायर किया था। वो उन्हीं की बातचीत का वीडियो था। मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की का नामो निशान मिटा दो, किसी तरह का सबूत नहीं रहना चाहिए और ना ही मेरा नाम आना चाहिए, कियाना वीडियो में बोल रही थी। उसने दीवा की फोटो रॉबिन के सामने कर दी थी।
वीडियो में दीवा का नाम सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी फोटो स्पष्ट दिख रही थी। रॉबिन ने कियाना की बात पर हामी भरी और बदले में कियाना ने उसके सामने नोटों से भरा एक सूटकेस रख दिया। वीडियो खत्म होते ही आर्यांश के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। उसने सार्थक की तरफ देखकर कहा, वेल डन सार्थक, समझो कियाना जैन से हमेशा के लिए पीछा छूट गया। जी सर, सार्थक ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव थे जिससे आर्यांश समझ गया कि वो कुछ कहना चाहता है। जो भी कहना है साफ साफ कहो, आर्यांश ने गंभीर आवाज में कहा। क्या आपने डॉक्टर गोयनका को लेकर कोई फैसला किया? जब आप कियाना से शादी के लिए मना करेंगे तब आपके घर वाले किसी और से शादी की बात जरूर करेंगे। ऐसे में आप उन्हें डॉक्टर गोयनका से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो एक अच्छी लड़की है, सार्थक ने धीमी आवाज में कहा। आर्यांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सार्थक ने कुछ पल रुककर आगे कहा, आप उन्हें माफ नहीं कर सकते क्या? इतने दिनों से आप उनके साथ हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो भी हुआ उसमें, सार्थक उसे समझा रहा था। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही आर्यांश सर्द लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं उसे माफ नहीं कर सकता, मैं उसे वही दर्द दूंगा जो मुझे मिला था। दोस्त थी वो उसकी, उसे उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो खुद मरने की हालत में थी, फिर कैसे उसे बचा सकती थी? सार्थक ने नजरें नीचे करके कहा। ये पहली बार था जब आर्यांश और सार्थक खुलकर उस हादसे का जिक्र कर रहे थे।
तुम कुछ भी कहो, लेकिन उसकी जान दीवा और उसकी फैमिली की वजह से गई है। उस वक्त गोयनका फैमिली ने अपनी इकलौती बेटी को चुना। मैं दीवा को उस मोड़ पर लाकर छोड़ दूंगा जहां सबसे पहले उसकी फैमिली ही उसका साथ छोड़ देगी। तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो ना? ठीक है, एक बार के लिए मान लेता हूँ कि वो खुद मरने की हालत में थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? उसके मरने के बाद वो कहाँ गायब हो गई थी? वो अपनी लाइफ अच्छे से बिता रही थी, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि उसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। क्या उसने ये जानने की कोशिश की कि उसकी मौत कैसे हुई थी? उसे अच्छे से पता है कि उसकी मौत के पीछे का जिम्मेदार उसका परिवार है, फिर भी एक बार भी उसने उन पर सवाल खड़े नहीं किए। उस वक्त प्रार्थना गोयनका ने कहा था कि इस दुनिया में उसे ही आगे बढ़ने का हक है जिसके पास पैसे होते हैं, तो मैं उन्हें हर एक चीज का मोहताज बना दूंगा, आर्यांश गुस्से में चिल्लाकर बोला। सार्थक बिल्कुल चुप हो गया। दीवा का प्यार भी आर्यांश को बदल नहीं पाया था। कई बार सार्थक को हैरानी होती थी कि न जाने आर्यांश किस मिट्टी का बना है। एक तरफ वो दीवा से प्यार करने का दावा करता था और उसे सबसे बचा कर रखना चाहता था, तो दूसरी तरफ उसे बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। आर्यांश ने पानी पीकर खुद को शांत किया। उसने सार्थक से कहा, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे मेरा मकसद याद दिलाया। गोयनका एम्पायर को जो हमने इंटरनेशनल डील भेजी थी उसमें उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उस कंपनी को खरीद लो। गोयनका एम्पायर के जो भी एसेट्स हैं वे कंपनी के जरिए हमारे पास आ जाएंगे। हम डील कैंसिल कर देंगे और फिर वे बर्बाद हो जाएंगे। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, सार्थक ने मिन्नत भरे स्वर में कहा। उसे दीवा के लिए बुरा लग रहा था। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूंगा, आर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा। सार्थक ने उसकी बात पर हामी भरी और बाहर चला गया। उसके पास आर्यांश की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच आर्यांश के पास समीक्षा का मैसेज आया जहां वो आज शाम होने वाले फैमिली डिनर के लिए उसे घर आने को कह रही थी। इन दिनों आर्यांश का बर्ताव ऐसा ही हो जाता था। आखिर इन्हीं दिनों में उसकी जान गई थी जिसे वो इतना प्यार करता था। अब तो उसके पास बदला लेने के लिए दीवा भी उसकी आंखों के सामने मौजूद थी। इससे पहले कि मेरा मन बदले मुझे अपने प्लान के हिसाब से ही चलना होगा, आर्यांश ने खुद से कहा और उठकर बाहर जाने लगा।